نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نیکی کے سفیر، اس میں سے انشاء اللہ تعالی ہم اگلی کہانی کنٹینیو کریں گے. ابھی تک ہم کتنی سٹوریز پڑھ چکے؟ 10 پڑھ چکے. آج 11th یعنی 11 نمبر کی کہانی ہے، پیج 102 کتاب کے اعتبار سے، اور ٹاپک کیا ہے؟ استقامت کا پہاڑ. آئیے اس کو پڑھتے ہیں، پھر اس میں سے سبق لیں گے. نیک سیرت لوگوں سے دوستی ہمیشہ باعث فلاح ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوستی دعوت اسلام سے پہلے کی تھی. یہی دوستی اور عقیدہ و عمل کی یکسانی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف عطا ہونے کا سبب بنی. اس کو ہائی لائٹ کر لیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ساتھ ساتھ ہی دوں گی، کیونکہ بعد میں دوبارہ جب ہم ساتھ چلتے ہیں تو وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور وہ بات رہ جاتی ہے. تو ادھر سے پہلی بات ابھی تک کیا پتہ چلی؟ کہ جب آپ اچھے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں تو اچھی چیز سب سے پہلے آپ کو آفر ہوتی ہے. یہ جملہ لکھ لیجئے. آپ دیکھیے کہ جس کے پاس بھی آپ بیٹھیں گے تو جو چیز اس کے قریب ہوگی وہ آپ کے بھی قریب ہوگی نا. اچھے لوگوں کے قریب بیٹھیں گے تو وہ اچھی چیز آپ کو دے گا. بالفرض ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام قبول کرنے یا نبی بننے سے، یعنی آپ کی بعثت سے پہلے آپ کے دوست نہ ہوتے، تو کیا ابو بکر صدیق کو آپ کے ہاتھ پر فوراً اسلام قبول کرنے کا موقع ملتا؟ ملاقات ہی نہ ہوئی ہوتی. کئی اچھے اچھے صحابہ ہیں لیکن ان کی ملاقات کئی کئی سال کے بعد ہوئی. تو آج سے زندگی میں یہ اصول لکھیے، یہ بھی ایک نیکی کا سفیر ہے. کل کتنے بتائے تھے؟ 4 بتائے تھے. دہرائیں گے؟ خوشی، تکلیف، وحی الہی یعنی علم، موت. تو ایک اور لکھ لیجیے، اچھے لوگوں کی دوستی نیکی کا سفیر ہے. بعض دفعہ ہم اچھے بننا چاہنے کے شوق میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں لیکن ہمیں اچھوں کا ساتھ نہیں ملتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بطور خاص اور باقی انبیاء کرام نے بھی یہ دعا کی، جس میں ہمارے اپنے پیارے نبی کی دعا ہے. آپ بسر مرگ پہ تو کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم بر رفیق العلیٰ، کہ اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کی دوستی دے دے. تو کیا پتہ چلا کہ اچھوں کی دوستی سے پھر نیکیاں کرنے کا موقع ہے. میں اس کو ایک چھوٹی سے طریقے سے سمجھانا چاہوں گی. جیسے آپ دیکھیے کہ میسیز سٹور ہے، آپ کی ایک دوست وہاں کام کرتی ہیں اور میسیز پہ ایک بڑی زبردست سیل کل لگنے والی ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے منع کیا ہو اپنے امپلائیز کو کہ پہلے نہ بتانا، لیکن آپ کی دوست جب وہاں کام کر رہی ہیں اور جو ہی سیل لگے گی وہ آپ کے لیے کچھ لینا دینا کر سکتی ہے. وہ آپ کو میسج کر سکتی ہے کہ سیل لگی ہے، آپ کہیں گے میرے لیے یہ لے کے رکھ لو. دوسرے تو جا کر خریدیں گے نا، آپ کو فوراً مل جائے گا. تو کیا پتہ چلا کہ میسیز میں چونکہ آپ کی فرینڈ کام کرتی تھی تو ان کی وجہ سے آپ کو میسیز کی سیل سے فوری فائدہ ہو گیا. دوسرے لوگ ہو سکتا ہے جنہوں نے سیل سائن کو چیز بھی کیا ہوا تھا لیکن وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے. تو پھر آپ کو جب بھی کبھی کوئی چیز لینی ہو، جدھر بھی کوئی آپ کا اپنا ہوگا وہاں سے آسان ہوگی. آج کے بعد کی زندگی یعنی فرام ٹوڈے، اپنی زندگی کا گول بنا لیں اور اللہ سے ایک دعا کر لیں کہ اللہ زندگی کے آخری دن تک اچھے لوگوں سے دور نہ کرنا. آپ اور میں آج اس دور میں یہاں بیٹھے یہاں سیکھ رہے ہیں نا. تقریباً پچھلے 3 سال سے آپ میں سے اکثر لوگوں کا یہ سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ، اور آپ کو عادت ہو گئی اب کافی ساری. یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر آپ کا کردار بنا رہی ہیں. آپ کو صبح آنے کی فکر ہوتی ہے، پھر آپ کو ٹیسٹ کی فکر ہوتی ہے، اسائنمنٹس کی فکر ہے، آپ کو کئی ایسی چیزیں جو وقت سے پہلے ہی فکر لگ جاتی ہے. اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے کوئی یہ سلسلہ کٹ کر دے کہ بس اب میں بزی ہو رہی ہوں، اب ذرا میں کچھ اور کر لوں، آئی نیڈ اے بریک، آئی نیڈ ٹو ہیلپ مائی ہسبینڈ، آئی نیڈ ٹو گو ہیئر دیر. میں اکثر لوگوں کے بارے میں درد کے ساتھ محسوس کرتی ہوں کہ ان کے تو فرشتے بھی حیران ہوتے ہوں گے، ان کے کرامن کاتبین بھی پریشان ہوتے ہوں گے. کل تک تو ان کی اتنی نیکیاں تھیں، ان کو غم فکر، ہم یہ نہیں ہوا وہ نہیں کیا، یہ کرنا بھی وہ کرنا. اور اسپیشلی اگر آپ میں سے خوش نصیب لوگوں کو اللہ ایڈمنز بنا دے گا، کل کا آج بنے، سال بعد بنے، 2 بنے، 4، نو پرابلم ایٹ آل. انصار اللہ بننے کے بعد جو نیکیوں کے موقع آتے ہیں، آپ پوچھئے کبھی کسی سے بیٹھ کر، एक वक्त में एक काम है तो दूसरे मिनट में दूसरा, तीसरे में तीसरा। एक बंदे ने हर चीज़ पे नज़र रखनी है ना। ठीक है स्पेसिफिक काम होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि एक वक्त आता है कि जो काम अच्छे करता है सारे काम उस पर पड़ जाते हैं। आप अच्छा करेंगे सारे काम आप करेंगे, आप अच्छा ना करिए सारे छूट जाएंगे। कि करके लोग बड़े प्यार से आपसे माजरत करके आपको फूलों का गुलदस्ता देकर रुख्सत कर देंगे। आज आप अपनी जगह से हटें, फिर देखें क्या आता है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको अपनी देती हूँ। हमारा पिछले दिनों एक ट्रिप पूरा हुआ ना, ये ट्रिप जिन्होंने भी अरेंज किया, कितने लोग, हर दिन डिफरेंट जगह ही थी ना, बहुत कम जगहों पे हमने एक दिन में दो तीन दर्स किए क्योंकि एवरीडे दर्स डिफरेंट था। अब उस पूरे ट्रिप को जब सॉर्ट आउट करके देखें हम, तो माइट भी हमारे पास 20 स्टेशंस थे, तो 20 में से हम उसको लगा लेते हैं कुछ जगह पे 2 दिन भी है, तो 15 लोगों ने फुल फ्लैच काम किया। लेकिन उनमें से हर एक को मौका कितना मिला उसके प्रोग्राम का। हम जिस जगह से होकर जाते थे लोग एक्साइटेड मिलना, ये उधर जाना, ये करना वो करना, और जिस दिन हम वहाँ से उठकर अब दूसरे स्टेशन पे आए या दूसरे शहर में, तो पीछे वालों के मैसेज आते थे, बोर हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, दिल बड़ा उदास है आज, समझ नहीं आ रहा करें क्या, ये वो ना, समझ गए। लेकिन मैं जो बात कहने लगी ना उस पर गौर कीजिएगा, उनकी 2-3 दिन की नेकी ली, अब उनका दिल तड़प रहा है, हाय फिर कभी मौका मिले और रहे ये करें। पर इन सब ने मिलकर, वो लोग जो यहाँ से मेरे साथ निकले या मैं खुद अपने ऊपर लूँ, उन्होंने हम सबको नेकियों का कितना मौका दिया। यानी मैंने अगर इन दिनों में अगर 25 दर्स किए, तो मुझे भी तो उन्होंने 25 मौके दिए ना नए लेक्चर्स तैयार करने के। तो मेरे लिए ये एक ट्रिप क्या बन गया, नेकियों का सफ़ीर बन गया। जिन दिनों ट्रिप्स नहीं होते, रूटीन लाइफ चल रही है, आजकल मैं आपको ये बुक पढ़ा रही हूँ, आपने मुझे इसका मौका दे दिया। अगर हम कहते छोड़िए ये 3 दिन है, हम अगले कोर्स की प्लानिंग में गुजारते हैं, बहुत सारे काम हैं, तो ये मौका ख़त्म होता। तो याद रखिएगा, ज़िंदगी में अच्छे लोग, अच्छे मशवरे देने वाले, आपको राय देने वाले, ये भी नेकी के सफ़ीर होते हैं। आपका किसी नेकी को करने को दिल कर रहा है, फ़ौरन कर लीजिए। करने को नहीं दिल कर रहा, आप डबल माइंडेड हैं, आप कन्फ्यूज हैं, आप परेशान हैं, आप फ़ौरन मुझसे रब्ता करें। मैं सबको अक्सर कहती हूँ, कोई काम करना है एडमिन को बताइए, अगर आपने कोई नहीं करना, कोई कोर्स नहीं करना, कोई क्लास नहीं करनी, कोई जिम्मेदारी आपको दी आप अब नहीं निभा रहे, कम टू मी, इंशाल्लाह मैं आपसे ज्यादती नहीं करूंगी, मैं आपको वही मशवरा दूंगी जो मैं अपने हक में पसंद करूंगी, और फोर्स भी नहीं करूंगी कि अब आपने मुझे पूछ लिया तो अब जाएंगे किधर। लेकिन बांध के रखें, और एक जुमला लिख लीजिए, अच्छी दोस्ती या अच्छी सोहबत जो ना, ये किल्ला होती है। कितनों को पता है किल्ला क्या होता है? किल्ला वो खूंटी होती है जिससे भैंस को बांधते हैं, लंबा सा नेल होता है, मोटा सा खूंटी कह लीजिए, और वो जमीन के अंदर गहरा सा डिक करके उसको खोते, क्योंकि उसने पूरी भैंस को बांधना होता है ना। अगर वो कच्चा हो तो भैंस खींचेगी ले जाएगी, स्ट्रांग मजबूत करना होता है। तो ये जो हमारी सोहबत, ये आपकी जिम्मेदारी, यानी इस पर एक और चीज़ इनमें आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द नेकी सफ़ीर। टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट विल बिकम योर एम्बेसडर ऑफ गुड डीड। क्यों? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हों ने उमर फारूक के बारे में कहा था, जब किसी ने एतराज़ किया कि आप अपने बाद उमर को नॉमिनेट करके जा रहे हैं, उनके मिजाज में तो बड़ी सख्ती है, और जिस तरह भी उनका मिजाज था जोश वाला, तो अबू बकर ने क्या कहा कि जिम्मेदारियों का एहसास उमर को हम्बल बना देगा। लिख लीजिए, आपके ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डलती जाएं उतने हम्बल होते जाएं, उतनी जिम्मेदारियां आती जाएंगी। तो टू बी हम्बल इज ऑल्सो एम्बेसिडर ऑफ गुड डीड। कई लोगों से नेकियां सिर्फ इसलिए ले ली जाती हैं वापस, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनसे ले ली जाती है, क्योंकि उनके मिजाज में तहम्मुल नहीं होता, चुलबुलापन होता है, हाइपरनेस होती है, इमोशनलिज्म होता है, उनके पाँव में ऐसी हर वक्त ही आग ही लगी रहती है, वो हर वक्त घबरा ही रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा देर नहीं चलेंगे, बिलीव मी, धूप वाली सड़क पे गर्म जमीन के ऊपर नंगे पाँव बहुत देर आप नहीं चल सकते। जूते पहन के आप जितना मर्जी चल लें, आपके मिजाज में इतना ठहराव और आपका टेम्परेचर इतना कूल होना चाहिए कि लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करें। आप किसी जगह रिस्पॉन्सिबल बना दिए गए और आप किसी को मिजाज में नहीं ले रहे, तो क्या पता चला, वापस आ जाइए कहानी पे, कि जब हम अच्छे लोगों से जुड़ के रहते हैं, उनको कहते हैं मेरा हाथ पकड़ लो, मैं नहीं आपका पकड़ूं, आप मेरा पकड़ें। वो स्टोरी भी याद आ गई कि एक बच्चा बाप के साथ किसी मेले में गया, तो बाप ने बच्चे से कहा कि मुझे अपनी उंगली पकड़ाओ, तो बच्चे ने नहीं पकड़ाई, तो बाप को गुस्सा आया, उसने पकड़ ली, और बाद में उसको कहने लगा, मैंने जब तुम्हें कहा था कि मेरा हाथ पकड़ो, मेरी उंगली पकड़ो, तो क्यों नहीं पकड़ी तुमने? काबू, मैंने इसलिए नहीं पकड़ी कि मैं अगर आपकी उंगली पकड़ता तो मेले में मुझे कोई चीज़ अच्छी दिखती, कुछ होता, मैं उसमें खोता, मैंने फ़ौरन छोड़ देनी थी। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर आपने मेरी उंगली पकड़ी तो आप नहीं छोड़ेंगे। ये कहे अल्लाह से, अल्लाह हम तो तुझे पकड़े, तू हमें पकड़। रो के आया करें यहाँ कि अल्लाह तू मेरी उंगली पकड़, अल्लाह तू मुझे अपना हाथ दे, मैं छोड़ दूंगी। मेरी ज़िंदगी में एक छोटी सी फ़ायदे की चीज़ आनी है, मैंने छोड़ के भाग जाना है। मुझे पता है अपना भी, मेरे अंदर अभी बचपन है, अभी मेरे अंदर दुनिया की मोहब्बत है, अभी चकाचौंध है। अल्लाह मैं नहीं तुझे पकड़ी, तू मुझे पकड़। रब्बी हबली हुक्म वल हिकनी बिस्सालेहीन, ये है असल में जमने का नाम। आप इस स्टोरी का नाम भी देखिए ना, इस्तकामत का पहाड़ है। आप और मैं दुनिया की सबसे नायाब चीज़, यानी नायाब इसलिए ये तो नहीं कहती कि नापैद, नायाब यूनिक चीज़ जिसकी दुआ कर सकते हैं अपने लिए आज के दौर में, वो रब्बना फ़रिग़ अलैना सब्रं वसब्बित अक़दामना वंसुरना लिल कौमिल काफिरीन। चुलबुली और हवा में लहराती और शोर मचाती नेकियां बहुत लोग करते हैं। पंपी ग्लैमरी, जैसे वो आपने पढ़ा है ना सूरत बकराई में, माजी के मुसलमानों का किरदार, के चमकती दमकती नेकियां बहुत करते थे। अफतू मेनू ना भी बात दिल किताबी व तक फुरू ना भी बात, कैदियों को पैसे देकर छुड़ाते ज़रूर थे, उसमें मज़ा आता था। लोग कहेंगे वाह कितने अच्छे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, लेकिन पहले लोगों को खुद ही उनके घरों से निकालते थे। असल सबसे मुश्किल नेकी जो मेरी नज़र में, वो टू कीप इट, इस्तकामत के टू कीप इट बी फॉर्म। पकड़ा तो आप जा रहे हैं, रस्सी को पकड़ना बड़ी बात नहीं, बट पकड़े रखना बड़ी बात है। आप नेकी का सफ़र शुरू करें, इट्स ओके, बट इस सफ़र पे चलते ही जाएं, ये है इस्तकामत। अब मुझे लगता है कहानी की बजाय ये इस्तकामत पे बात शुरू हो जाएगी, इसीलिए मैं स्टोरी के बीच में छेड़ती नहीं। अगर मैं छेड़ूं तो एक दिन मैं एक कहानी पढ़ाऊंगी आपको, बिलीव मी। लेकिन नेकियों के मौके को अपने लिए ऑनर समझें। किसी वक्त आप किसी एक जिम्मेदारी जो आपके ऊपर डाली जा रही होती है, उसको ये सोचकर बहुत मुश्किल, बहुत नहीं, अभी हालात ठीक नहीं, अभी सोचने दीजिए, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, फ्रॉम फलां, कारे जहां दराज सब मेरा इंतजार कर, नहीं मिलेगी। आप लें, नाम गलत ना मैं बोल दूं, अशरफ अली थानवी साहब एक बहुत बड़े स्पीकर हैं, आलिम हैं, उनके फिकह हनफी के, मैं भूल नहीं रही, मुझे ये भी नहीं पता अभी हयात है कि नहीं, उनका एक कॉल मैंने कहीं पढ़ा था कि जब मैं अपने अमल में किसी चीज़ में कमी देखता हूँ, यानी मिसाल है कि मेरे अंदर किसी भी नेकी में अभी पूरी फर्मनेस नहीं है, तो मैं उसका तذکرہ दूसरों के सामने करना शुरू करता हूँ, उनको टीच करता हूँ ये किया करो, वो किया करो, ये किया करो, तो उसके बाद फिर मुझे शर्म आती है कि मैं दूसरों को कह के आया हूँ, तो मेरा अमल पक्का हो जाता है। तो फिर बात वापस आ जाइए, क्या है कि अबू बकर सिद्दीक को सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शर्फ जो मिला, उसके पीछे नेकी का सफ़ीर क्या था? दोस्ती। अच्छे लोगों से दोस्ती कीजिए, इंशाल्लाह वो आपको नेकियों की तरफ बुलाएंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत और रिसालत के आला और अरफा मनसब पर फ़ाइज़ कर दिया गया, तो आपने सबसे पहले अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हो के दिल के दरवाज़े पर दस्तक दी और इन्हें इस्लाम की दावत पेश की। यहाँ रुक के सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सबसे पहले अपने दोस्त को बुलाया नेकी की तरफ, हमने बुलाया? यहाँ बैठकर 3 सेकंड या चले 5 सेकंड सोचिए, आपको जो भी नेकी की दावत मिलती है, और माशाल्लाह अगर क्लास में आप रोज़ आ रहे हैं तो हर दिन नए टॉपिक, नए फ्लायर, नए कोर्सेज, कुछ भी एक मौके तो मिलते ही है ना, क्या मैं अपनी हर दोस्त तक ये दावत देती हूँ? ये तो नहीं कि दो चार को दे दिया, अच्छा वो ग्रुप में मैसेज भी डाल देती हूँ, कोई पढ़ता भी है कि नहीं, कभी पूछा भी कि नहीं। आप कभी भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेज डालें ना, बाद में उसकी इन्फो पे जाकर चेक करें किस किसने देखा, किसने नहीं। अगर आपको फील हो रहा है ना कि किसी ने खोला ही नहीं है, रीड नहीं, उसको पकड़ के इनफरादी तौर पर डाल दें, एक मैसेज कर दें, मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था, आपने पढ़ा नहीं, ये आप सुन लीजिए। देखिए ये तड़प लाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आप देखें ये आपकी डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन होगी आपकी दोस्तों तक। आखिर वजह क्या है, पीछे क्यों पड़े रहते हैं मेरे, क्यों मैं जान छुड़ाऊं? आखिर एक दिन फिर वो आपकी इस दावत पे ज़रूर कान धरेंगी इंशाल्लाह ताला। پھر وہ اطاعت پیغمبر اور محکم ایمان کی ایسی یگانہ مثال ثابت ہوئے کہ پوری امت مسلمہ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. قائد انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فدویانہ, فدویانہ کیا ہوتی ہے؟ فدا ہو جانا, یعنی ایسی دوستی جس میں بندہ دوسرے پہ فدا ہو جائے, قربانی ہو جائے. دوستی کے باعث اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلامی معاشرے کا سب سے بڑا آدمی بنا دیا. قبول اسلام کے لمحہ اول سے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں تبلیغ دین اور ترویج حق کا بے پناہ جذبہ پیدا ہو گیا. ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپ کر اسلام کی دعوت دیتے تھے اور مسلمان بھی اپنے دین کو چھپائے پھرتے تھے. جب مسلمانوں کی تعداد 38 یعنی 38 ہو گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت دینے پر اصرار کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہی فرماتے رہے, ابو بکر ہم تھوڑے ہیں, ذرا صبر کا دامن تھامو. کیا پتا چلا؟ آپ دیکھیے کہ جو بات اس میں ہم سمجھ لیں اپنے لیے وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ صرف ایک بندے تک آپ پیغام پہنچاتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ چلتا, اس وقت اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کل آپ کے لیے کتنا بڑا خیر کا ذریعہ بنے گا. یہاں تو ابو بکر صدیق کی بات ہے نا, ہر نیکی کے پیچھے ابو بکر کا نام ضرور ہے, ہر قربانی کے پیچھے ابو بکر کا نام موجود ہے, ہجرت کے پیچھے ابو بکر کا نام موجود ہے. میں اکثر سوچتی ہوں, کبھی ظاہر ہے کہ انسان اکیلے میں بیٹھتا ہے تو سوچتا تو ضرور ہے نا, میں سوچتی ہوں کن کو؟ امام بخاری کو. آپ ہی جیسی ایک کوئی کلاس ہوتی ہوگی نا آج کی سوچ کے ساتھ, اگر ہم دیکھیں وہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس میں امام بخاری بھی آتے ہوں گے. کیا ان کے استاد کو اس بات کا ہلکا سا اندازہ بھی تھا کہ یہ بچہ کل میرے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بنے گا؟ اور تصور کیجئے کہ ایک دن کلاس میں کوئی بھی نہ آئے, صرف امام بخاری بیٹھے ہوں, تو استاد کیا کہہ رہے, تم ایک ہو, میں تمہیں کیا پڑھاؤں, پھر چھٹی کر دیتے ہیں. ان کو کیا پتا کہ یہ ایک کیا ہے. اپنے لیے یہ دعا کریں, اللہ مجھے اس کلاس کا بخاری بنا, میرا فیض آگے جاری ہو, میری خیر آگے جاری ہو, آج بھی اس فتنوں کے دور میں بھی صحیح بخاری کی اپنی حیثیت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رول ماڈل بنا لیں, آپ میں سے کوئی ابو ہریرہ بنے, کوئی امام بخاری بنے. آپ اپنے لیے ہمیشہ دی بیسٹ کرائٹیریا رکھا کریں. میں جب بھی کسی کلاس میں بیٹھتی تھی, ابھی بھی بیٹھتی ہوں, مجھے جہاں موقع ملے, اللہ کے حکم سے کم ملتا ہے لیکن ملے, تو میں وہاں یہی بیٹھ کر سوچتی ہوں کہ مجھے اللہ اس کلاس کا دی بیسٹ اسٹوڈنٹ بنانا. یہ نہیں کہ میرا نام بورڈ پہ آ جائے اسٹوڈنٹ آف دی ایئر اور فلاں فلاں, مجھے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان چیزوں سے. بس مجھے یہ لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ پوری کلاس میں اس وقت جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا, تو میرے دل پہ سب سے بڑی بات ڈال دے, مجھے سب سے زیادہ سمجھ آ جائے, میرے اوپر تو القا کر دے. یعنی ادھر بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں, یہ بھی ایک نیکی کا سفیر ہے کہ جب آپ اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوں تو اللہ سے باتیں کریں. آپ رب سے کہیں, اللہ ابھی نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی, مجھے اور چاہیے, ابھی تو اوپر چھلکا ہے میرے پاس, میرے اندر گودا تو ہے ہی نہیں. یقین کریں کہ اسی سفر میں پھر آپ کی تربیت ہوگی. اگر آپ آگے سے یہ کام اور سیکھنا چھوڑیں گے نا, تو جو اوپر قرآن کا اثر صبغت اللہ کا آیا ہوتا ہے نا, وہ ایسے ایسے مٹنے لگتا. جتنا مرضی کہہ لیں وہ بات بنتی نہیں ہے. جس گھر میں روز رہیں جائیں صاف کریں, وہ صاف رہتا ہے, اور بند کر دیں مٹی کہیں نہ کہیں سے آئی جاتی ہے. جس دن یہ کتاب بند کر کے ہم بیٹھتے ہیں, ہمارے خیالات پہ مٹی اور گرد و غبار آنے لگتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے بندہ سوچتا ہے میں اتنی ایموشنل ہو گئی تھی, میں روز جاتی تھی, ہائے یہ بھی کام میں نے اپنے اوپر لیا ہوتا, یہ بھی لیا ہوتا, اور اس وقت بھی شیطان کیا کندھے تھپ تھپائے گا, نہیں تم ٹو مچ ہو گئی تھی. نکمی گھر میں میاں بھی تو ناراض رہتے تھے, اور اللہ معاف کرے گھروں میں ہزار لوگوں کے فتنے ہیں, ان میں ایک بھی دین پہ نہیں ہے, دین کے کام نہیں کرتا. اور جہاں دین کے کام کرنے والوں کے گھر سے کوئی ایک آواز نکلی تو دین 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 بدنام ہونے لگتا ہے. چونکہ یہ جاتی ہیں تو یہ تو ہوگا, چونکہ یہ کرتے ہیں یہ تو ہوگا, چونکہ ان کے مرد دین میں بہت دن تو ان کی بیویاں تو نگلیکٹ کی آوازیں آتی ہیں. یہ بھی ایک سوتیلا پن ہے ہمارا آج دین کے ساتھ. تو کیا پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں جو نیکیوں کا بیج بویا تھا نا, وہ صحبت نبوی نے بویا تھا. अबू बकर सिद्दीक मुसलसल इसरार करते रहे, हत्ता के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम की तरफ निकले। दीगर मुसलमान भी आपके साथ चल दिए। तमाम मुसलमान मस्जिद के कोनों में बिखर गए। हर मुसलमान अपने अपने कबीले में जा बैठा। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए, खुतबा देने लगे। इस्लाम के ये पहले खतीब थे, नोट करें इसको भी, जिन्होंने लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दी। मुशरिकीन ने देखा कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु इनके माबूदों की इज्जत पामाल और इनके दीन पर तान कर रहे हैं, तो वह अबू बकर और दूसरे सहाबे कराम पर पल पड़े, यानी इनको मारने लगे, और मुसलमानों को बहुत मारा। इसके बावजूद अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु दावत देते रहे। रुकिए और सोचिए, अगर खुदा न खास्ता ये रिस्पॉन्स हमें मिले कैनेडा ट्रिप से, अगर हमें ये रिस्पॉन्स मिला होता शिकागो ट्रिप से, ये रिस्पॉन्स मिला होता डिट्रॉयड में, हमारे साथ ये हो रहा होता, तो कितने लोग हैं जो अगले कामों के लिए तैयार होते हैं? ये मेरे जुमले वो समझ जाएंगे जिन्होंने वो रिस्पॉन्स देखा होता है। आज हम जाते हैं लोग फूलों का, अक्सर जगहों पे कहीं भी हॉल में जाए ना, तो लोग पता नहीं ये क्या आदत ही है या फैशन है, आई डोंट नो, प्यार से करते होंगे, इज्जत है, फूल लेके खड़े होते हैं लोग अक्सर। 90% दरसों में कोई वहाँ नहीं खड़ा होगा तो इधर ला के देगा। मैं आपको बता नहीं सकती मेरे लिए ये कितना एम्बेरसिंग वक्त होता है, वल्लाही एम्बेरसिंग। कई दफ़ा तो मुझे चुरचुराहट आने लगती है कि अल्लाह ये दिखावा है हमारा, मेरा दिखावा है दीन का, कि मुझे फूल मिल रहे हैं अल्लाह के नबी, और देखिए अबू बकर को क्या मिलता था। वो अच्छे थे कि हम अच्छे? हमें अच्छी बात करनी आती कि उनको आती? हमारे पास इल्म ज़्यादा कि उनके पास है? हमारा तकवा ज़्यादा कि उनका तकवा? बिलीव मी, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, किसी ने ऐसे, कोई एक बड़ा टिपिकल ग्रुप है, तो उन्होंने अपना इजलास, सालाना इजलास या जलसा जो भी होता है ना, इस तरह का रखा हुआ था। तो उसमें उन्होंने, मेरा जो टाइम था, मैं वक्त से पहले थोड़ा पहुंच गई, मैं आके सीधे इधर आ गई। मेरी आदत है नहीं, अपनी क्लास में आती हूँ, मैं आपको कहती हूँ बातें करते रहे, मुझे इधर बैठने दें। उसके बाद उनकी उन इंतजामियों से एक आई, ये माजरत है, आप ज़रा भी उधर आ जाइए। मैं क्या, खैरियत शायद मेरे से पहले किसी और का? कहती नहीं, ऐसे में हम आपको बुलाएंगे अभी। फिर मैं उठ के उधर चली गई, मैंने और क्या करना था, शर्म तो मुझे बहुत आई। फिर उन्होंने मुझे वहाँ बिठा कर, उन्होंने जो इंट्रो देने शुरू किए, ये वहाँ से ये फुला, जो लोग अपने करते हैं, मतलब उन्होंने थोड़ा वेलकम किया अपने लोगों को कर करा के, फिर उन्होंने हमारा तारुफ शुरू हो गई नारुल कुरान का और ये वो। तो फिर उन्होंने कहा मैं अब दावत देती हूँ सिस्टर। वो मेरे कदम वहाँ से यहाँ तक मुझे अभी भी याद है, मन मन भर के थे। इससे मैं डरने के लिए पहले बैठती हूँ, मुझे शर्म आती है सबके बीच में से उठ के आना, जब कोई मेरा नाम ले, बुरा भी लगता है, वो सब कुछ मिलजुल के होता है। जैसे वो दुल्हन आए तो उसका इस्तकबाल करना है, तो अब जरा वो दुल्हन को रोक ले, अभी गाना तैयार नहीं है, यानी मुझे ये सब कुछ बस ऐसे ही लगता है कि कम अज़ कम मैं इसको डिजर्व नहीं करती। अबू बकर को देखिए क्या मिल रहा है। मैं सोचती हूँ कि हम उस नज़र से अपने दीन को देखने लगे ना, तो कभी हमारे अंदर हवा ना भरे जो भरने लगती है। अल्लाह ताला बस हमें आजिज़ी दे दे, ये दुआ कर लें। अब ज़रा देखिए अबू बकर के साथ क्या होता है। मुशरिकीन के गिरोह ने इन्हें घेर लिया और इस कदर मारा कि अपनी ढाल होकर ज़मीन पर गिर पड़े। इस वक्त आप उधेड़ उम्र में थे, एक फासे कुतबा बिन रबी आपके करीब आया, वो आपके सीने और पेट को रौंदने लगा, इसने आपके चेहरे पर जूते मारे, ला हौला वला कुव्वता, आपके चेहरे का गोश्त फट गया और खून बहने लगा, चेहरे से इनकी शिनाख्त मुश्किल हो गई, आप बिल्कुल बेहोश हो गए। इतने में आपकी कौम बनी तमीम के लोग यके बदीगरे आने लगे। जरा से इस मंजर को अपने ऊपर लेकर सोच। फिर दोबारा ये नेकियों पे चल पड़ते थे, फिर इनको कुछ नहीं होता था। कितना बड़ा ये टेस्ट है बंदे की अना पे चोट पड़े कि आप बात करें, मैं आपसे बात करें और आपके खामोश हो जाएं, हमें नहीं सुनना आपको, और उसके बाद ये हालात हों, कितने लोग हैं जो फिर दोबारा निकलें। और मैं ये सोचती हूँ कि ये थी असल में इनके ठुकने की वजह। जो अपने लिए आता है ना, वो ये सुन के बर्दाश्त नहीं करेगा, वो चला जाएगा। जो अल्लाह के लिए आता हो, कहता कुछ और भी कहना है तो कह लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अबू बकर सिद्दीक की ये हालत, जिनको आज हम इतने प्यार से बुलाएं, और उस वक्त देखिए ना, फिजिकली उनके साथ तो ये हो रहा था ना, उनको क्या पता आज 1400 साल बाद हम उनके नाम के साथ कितने सांप के लाख के लगाते हैं। तो जो अपने वक्त में दीन के लिए बेइज्जत हो जाता है ना, उसको बाद में इज्जत मिलती है। या जो चार आइमे कराम के नाम पे उम्मत के चार गिरोह हैं ना, कभी अब इनके हालात तो पड़िए, हर एक को अपनी ज़िंदगी में मारे भी पड़ी, जेलों में भी रखे गए, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन ये डटे रहे। तो ये जो जाहरी हम चंद लोगों में अपना नाम सुनकर शोहरत सुनकर फूलने लगते हैं ना, ये कयामत के दिन बड़े रिजल्ट गलत हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब के ऊपर अपना रहम ही कर दे। खैर, उन्होंने मुशरिकीन के हजूम को आपसे परे हटाया और आपको कपड़े में लपेट कर उठा लिया। वो आपकी ज़िंदगी से नाउम्मीद हो चुके थे। वो आपको घर ले आए। आपके वालिदे मोहतरम और आपकी कौम के लोग आपके सरहाने बैठ गए। वो आपसे बातें करते थे लेकिन आप कोई जवाब ना दे पाते। जब दिन छुपने लगा तो आपको कदरे इफाका महसूस हुआ। आपने आंखें खोली तो फौरन सबसे पहले ये पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या बना? देखिए, दिल में मोहब्बत थी ना, तो अपनी नहीं फिक्र, नबी की फिक्र है। मुझे इनकी खैरियत से आगाह करो। आपके वालिद गुस्से में आकर बुरा भला कहने लगे, फिर वहां से चले गए। आपकी वालदे मोहतरमा आपके पास बैठकर आपको खिलाने पिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब बार बार यही पूछ रहे थे कि रसूलुल्लाह का क्या बना, मुझे इनकी खैरियत से मुत्तले करो। इनकी वालदा ने कहा, अल्लाह की कसम मुझे कुछ मालूम नहीं। अबू बकर ने कहा, अम्मा जान, ज़रा उम्मे जमील बिनते खिताब के पास जाइए और इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात मालूम करके आइए। उम्मे जमील इस्लाम, उम्मे जमील कौन थी बताए आपको? सुनिए पहले, फिर आपको समझ आएगी। खिताब कौन थे? खिताब उमर के बाप थे ना, तो उम्मे जमील कौन हुई? उमर की बहन हुई। जी, अबू बकर ने कहा, अम्मा जान, ज़रा उम्मे जमील बिनते खिताब के पास जाइए और इनसे रसूलुल्लाह के हालात मालूम करके आइए। उम्मे जमील इस्लाम ले आई थी लेकिन अपने इस्लाम को छुपाए रखती थी। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो की वालदा उनके पास पहुंची और कहा कि अबू बकर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो कहता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? उम्मे जमील को ख़तरा लाहक हो गया कि कहीं ये लोग मेरे इस्लाम कबूल करने की खबर ना फैला दें। उन्होंने अनजान बनते हुए कहा, मैं अबू बकर को जानती हूँ ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगर आप पसंद करती हैं तो मैं आपके साथ अपने बेटे के पास जाऊँ तो मैं तैयार हूँ। अबू बकर की वालदा ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर आइए, मेरे साथ चलिए। वो दोनों अबू बकर के पास आईं तो उम्मे जमील ने आपको ज़ख्मों से चूर पाया। आपका चेहरा शदीद ज़ख्मी था। वो ये देखकर रोने लगी और कहा, अल्लाह की कसम, जालिमों ने अपने कुफ्र व फिस्क की वजह से तुम्हारे साथ ये सलूक किया है, लेकिन मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो इनसे ज़रूर तुम्हारा बदला लेगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उम्मे जमील की तरफ मुतवज्जे हुए और पूछने लगे, उम्मे जमील, मुझे बताओ अल्लाह के रसूल का क्या हाल है? उम्मे जमील ने आपकी वालदा की तरफ देखा। वह अभी तक मुसलमान नहीं हुई थी। इन्हें डर लाहिक हुआ कि कहीं ये काफिरों को मुसलमानों के राज न बता दें। उम्मे जमील ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, आपकी वालदा हमारी बातें सुन रही हैं। आपने कहा तुम्हें कोई ख़तरा नहीं, बेफिक्री से बात करो। उन्होंने बताया, अल्लाह के रसूल बिल्कुल सही सालिम है और इब्ने अरकम के घर तशरीफ़ फरमा है। आपकी वालदा ने कहा, अब तो तुम्हें अपने साथी की खैरियत मालूम हो गई है, अब तो कुछ खा पी लो। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं इस वक्त तक कुछ नहीं खाऊं पीऊंगा जब तक अल्लाह के रसूल को अपनी आंखों से ना देख लूं। उन्होंने अपने आप को रोके रखा। चलिए, मुहासबा अपना करते हैं। सच्चा प्यार दिखता है, कहना नहीं पड़ता, जतलाना नहीं पड़ता। दिल में किसी के लिए प्यार होता है ना, तो ज़्यादा लफ्ज़ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, इज़हार खुद ही होता है। खाना नहीं खा रहे कि जब तक नबी ने ना खाया। हैरियत तो मालूम हो गई है लेकिन अभी आप तो भूखे होंगे। आप देखिए कि अल्लाह ताला को कभी गलती नहीं लगती। ये जुमला मैं आजकल कई दफ़ा बोलती हूँ, अल्लाह ने अगर आपको कुछ दिया है तो गलती से नहीं दिया, और अगर आपसे कुछ ले रहा है ना तो गलती से नहीं ले रहा। अल्लाह ने अपने नबी को इतना प्यारा साथी दिया, अबू बकर सिद्दीक जैसा। वाकई वो अबू बकर ये डिज़र्व करते थे कि वाकई अल्लाह के नबी के साथी होते। खैर, जब रात छा गई और लोग सो गए तो अबू बकर ने खड़े होने की कोशिश की लेकिन खून बहने की वजह से बहुत कमज़ोर हो चुके थे। उम्मे जमील और आपकी वालदा आपको सहारा देकर रसूलुल्लाह के पास ले आईं। जब रसूलुल्लाह ने आपको देखा तो सीने से चिमटा लिया और बोसा देने लगे। नबी को आपकी हालत ज़ार देखकर बड़ा तरस आया और सहाबे कराम भी बहुत रंजीदा हुए। अबू बकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, सिर्फ चेहरे की चोट तकलीफ़ दे रही है जो इस फासिक उतबा बिन रबिया ने लगाई है। फिर अबू बकर ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये मेरी वालिदा हैं, ये मुझसे बहुत ही अच्छा सलूक करती हैं, आप मुबारक शख्सियत हैं, इन्हें अल्लाह की तरफ दावत दीजिए और इनके लिए दुआ भी फरमाइए, उम्मीद है कि अल्लाह इन्हें आपके ज़रिए से जहन्नुम की आग से बचा लेगा। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से दुआ की, फिर इन्हें इस्लाम की दावत दी तो वो भी मुसलमान हो गईं। तो बेटे ने माँ के लिए सिफारिश की। हम सबको भी सोचना है क्या, क्या आप सब्र इस्तकामत के इस पहाड़ को देखिए, जिन्हें लोग अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के नाम से जानते हैं, वो लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देते हैं और तबलीगे दीन का कैसा पुरजोश वलवला और हौसला रखते थे। मुशरिकीन ने इन्हें कितना मारा, हत्ता कि वो बेहोश हो गए और जान के लाले पड़ गए, फिर भी जब होश में आए तो इन्हें अपनी कोई फिक्र न थी। इनकी सबसे बड़ी बेकरारी और बेताबी सिर्फ ये थी कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाल में है। मोहब्बत और फदवियत की ऐसी मिसाल कहाँ मिलेगी, वो जख्मों से चूर थे, खड़े होने की सकत भी न थी, फिर भी इन्हें अल्लाह के दीन की दावत देने का और तबलीग का कितना बेताब शौक था कि अपनी वालदा माजिदा के मुसलमान हो जाने के लिए अल्लाह के रसूल से दुआ करने की दर्दमंदाना दरख्वास्त की और वो अल्लाह के फजलो करम से मुसलमान हो गई। अब हम अपने दिल से पूछें, अब ये सारे सवाल आपके और जवाब आपका दिल, हमने इस्लाम के लिए क्या किया है? सोचिए जरा, जो किया वो लिख लें, और माजरत के साथ कि अगर सुबह फजर की नमाज पढ़ी है आपने, तो आपने इस्लाम के लिए नहीं पढ़ी, अपने लिए पढ़ी है। इस्लाम को कुछ नहीं उससे मिलेगा, आप ना पढ़ते तो आप पकड़े जाते। तो जो हमारे फ़राइज़ है, हमारी इबादत है, ये हमारे अपने लिए हैं। आगे चलिए, कितने लोग हमारे ज़रिए से हिदायत याफ्ता हुए हैं? आपका मेरा दायरा असर कहाँ तक है? आपको पता है कि पुल सरात पे जाकर अंधेरों में जब लोग फंसे होंगे ना, तो एक दुआ कर रहे होंगे, रब्बना तमिम लना नूरना, अल्लाह हमारे नूर को पूरा कर दे। और अल्लाह के नबी सल्लम की अहादीस से पता चलता है कि बंदा मोमिन की नेकियों का असर जहाँ तक पहुँचेगा ना, वहाँ तक उसके लिए नूर होगा। कुछ लोगों का मदीना से अदन तक, और कुछ का सिर्फ पाँव के अंगूठे पे टिमटिमाता हुआ एक छोटा सा शोला। सच्ची बात है, ज़रा सोचे तो सही। अच्छा, लोग कहते हैं फलां तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लगती है लोगों को, यानी कुछ लोगों को बड़ी जल्दी शोहरत मिल जाती है, किसी का एक लेक्चर हिट हो जाता है, जैसे किसी एक फिल्म अदाकार की कोई फिल्म हिट हुई तो वो ऊपर चला गया, और किसी गुलकार का कोई गाना हिट हुआ तो वो ऊपर चला गया, अचानक शोहरत होती है। अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं होता, ये लिख लें, यहाँ भी अल्लाह को गलती नहीं लगती। आप हजरत नूह की मिसाल देख लीजिए, बाहर आज की ज़ुबान में बोलें तो उनको तो कोई बहुत पजीराई नहीं मिली, बहुत सारे उनके फैंस नहीं थे, बहुत सारे लाइक्स नहीं थे, सब्सक्राइब्स नहीं थे करते बहुत सारे, तो क्या फिर उनके ज़रिए से फ़ायदा नहीं हुआ? क्या हम अक्सर कहते हैं कि हाय हज़रत नूह के साथ तो सिर्फ 70 से 80 लोग आए, यही कहते हैं ना? बज़ाहर 950 साल में 70 80 लोग, 12 साल बाद एक शख्स आपकी दावत पे मुत्तफिक हुआ और आ गया, लेकिन आज तक देखिए, पहली बात है कि उस दौर में लोग थे ही कितने, कोने में लोग, एक दुनिया पूरी तो आबाद ही नहीं थी। दूसरी बात कि आज क्यामत तक जितने मुसलमान हैं वो उनकी नस्ल से, अल्लाह हक नहीं लेता, अल्लाह ने नूह का हक नहीं मारा, ये याद रखे। कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में शोहरत और फ़ायदा और पज़ीराई मिल जाती, कुछ को बाद में मिलती है। तो इसलिए इससे भी गलत फहमी का शिकार ना हों कि आपकी दावत कितने लोगों तक पहुंच रही है। और याद रखिए, बड़ी कड़वे दिल से बात कहने लगी हूँ, कई लोगों की बात हजारों कान सुन जाते हैं, 10 दिल भी कबूल नहीं करते, असर नहीं होता, तासीर नहीं होती। ये दुआ किया करें, कौलम बलीगा, अल्लाह हमें दिल में उतरने वाली बात करने वाला बनाए। और बात में असर कैसे आता है, ये भी एक अपनी जगह टॉपिक है। तो बात सारी ये है कि आपको मुझे फिर भी पूछना है, हाँ फिर ये क्या है, ये क्या है कि हमारे जरिए कितनों को हिदायत मिली, कोशिशें कितनी हैं? आपका मेरा काम ये है कि मैंने इस्लाम के लिए करने की कोशिशें कितनी की। वान लिल इंसानी इल्ला मासा, सूरत नजम, अल्लाह कहता है बंदे को वही मिलेगा जिसकी उसने कोशिश की, मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। सूरत अनकबूत में भी क्या आता है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारे रास्तों में मेहनत करते हैं, मुजाहदे करते हैं, हम उनको रास्ते दिखाते हैं। तो ये दो तीन डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, फिर अगला सवाल कीजिए अपने आप से, क्या हमने अल्लाह के रास्ते में तकलीफें बर्दाश्त की हैं? अल्लाह अकबर, हमारी तकलीफ तो ये है कि सुबह नाश्ता नहीं बनता, हमारी ये भी बड़ी तकलीफ है, हमें सुबह सुबह घर छोड़कर आना पड़ता है। शुरू में ये भी लगता है, ये भी मैं बता दूं, आपका इल्म का सफ़र जो है ना, ये असल में मुजाहदे के रास्ते का पहला कदम होता है। आज भी अगर आपको जिहाद के 7 दर्जे लिखाऊं तो पहला जिहाद यही है कि आप खुद को इल्म के लिए लाते हैं, ये मुजाहिद आपका अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में ये बहुत बड़ी तकलीफ़ लगती है, हाय नाश्ता नहीं बन रहा, हालांकि अक्लमंद बीवियाँ बना के आती हैं, कर लेते हैं, समझ करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो छोटी से छोटी चीज़ बड़ी तकलीफ़ है। वही सूरह अनकबूत की आयत कि कुछ लोग हैं अल्लाह के रास्ते में जो लोगों से बातें सुननी पड़ती हैं उसको भी अल्लाह का ही फितना और अल्लाह का अजाब समझ लेते हैं, यानी हम छोटी बात को बड़ा कहते हैं। फिजिकल टॉर्चर हुए ये अबू बकर आले, और यहाँ नहीं लिखी हुई बात, हदीस में आती है, हजरत आयशा कहती हैं कि उस रात मेरे बाप का ये हाल था कि ऐसे बालों को पकड़ें तो लटों समेत उनकी जड़ें बाहर आ रही थी, उन्होंने इतने बाल नोचे थे अबू बकर के। मेरे साथ ये हुआ, क्या हम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा अदा कर रहे हैं? हम सबको सोचना है। आप देखिए कि ये एक एक करके कदम चलते हैं ना, तो फिर ही ये काफिला तैयार होता है, और हमारी यही तकलीफें हैं जो हमारा अपना लाइफस्टाइल बदलेगा। मैं पहले भी कह रही है, रब भी कहूंगी, अगर आपने इस पढ़ने पढ़ाने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है ना अभी तक, तो पाएंगे भी नहीं पूरा, आपको आगे भी छोड़ना पड़ेगा। जो मर्जी छोड़े, नींद छोड़े, आराम छोड़े, जॉब छोड़े, घर का मज़ा छोड़े, शॉपिंग छोड़े, मॉल में जाना छोड़े, घंटों फोन की बातें छोड़े, चिट चैट छोड़े, छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता आप छोड़े ना और मिल जाए, इट्स इम्पॉसिबल। इतना सस्ता सौदा तो ये है भी नहीं है ना, हम देते क्या इस रास्ते में, लेना भी किसी को कुछ नहीं। असल जो छुड़वाता है, लन तनालुल बिर हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बुन। आप हर एक अपना जाके वीक पॉइंट कहीं चुपके से लिख लें, होता है हर एक का, किसी को बात नहीं अच्छी लगती, किसी का वीक पॉइंट उसका हस्बैंड होता है, किसी का वीक पॉइंट उसकी ससुराल है, उधर सही कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको, नहीं देंगे तो नहीं होगा। सबसे पहले अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर नज़र डालें, क्या हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों को ठीक ठीक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों के मुताबिक पूरा करते हैं? असल मसला यह, नेविगेटर इधर ख़राब है, डायरेक्शन दूसरी डली हुई है। इस वक्त हमारा जो प्रॉब्लम ना, हम उल्टे जूतों में पाँव रखे हुए हैं, राइट फुट लेफ्ट में, लेफ्ट राइट में डाला हुआ, सबसे बड़ा इशू जिसको पंजाबी उर्दू में कहते हैं आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है, जो सीधा चलना चाहता है वो बेवकूफ़ लगता है। ऐसे ही है, सीधे चलने वाले को लोग बेवकूफ़ कहते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा था, दीन उबदाऊ गरीबा, दीन अजनबियत और गुरबत से शुरू हुआ था, और एक वक्त आएगा ये दोबारा अजनबी होगा। आज सुन्नतों में अमल करने वाले लोगों को बैकवर्ड लगते हैं, बिदात पे अमल करने वाले बड़े पंपी ग्लैमरी हैं कि चलो देखो ना, दीन भी रखा हुआ है तो दुनिया भी रखा हुआ है। तो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के नबी के मुबारक तरीक़ों के मुताबिक बनाना, ये कामयाबी की दलील है, ये है की टू सक्सेस। इसके बाद आपकी नेकियाँ आएंगी, और ये भी लिख लीजिए, ये भी नेकी का एम्बेसडर है, सुन्नत के साथ थोड़ा सा अमल भी ज़्यादा नेकियाँ लिखाएगा क़यामत के दिन। और सुन्नत को निकाल दीजिए, बड़ी बड़ी नेकियाँ हमाम मंसूरा बन जाएंगी, हमाम मुंबस्सा बन जाएंगी। तो सुन्नत एक मैजिक स्टोन है, जिस चीज़ के साथ लगा देंगे ना इबादत, रात को सोते सभी हैं, मुसलमान काफिर फाजिर सारे ही सोते हैं, आप बस सुन्नत के मुताबिक सोना शुरू कर दें, आपका सोना इबादत। बीवी बच्चों को खिलाते सारी हैं, पालना पेट मेहनत सारी करते हैं, आप इसलिए कह दीजिए कि ये मुझे अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है नबी के तरीके पे, ये भी इंशाल्लाह सुन्नत है, इसी में अजर है। फिर अगला सवाल देखिए, क्या हम अपने बीवी बच्चों और रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को रब्बे जुलजलाल की अजमतों और सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनव्वर आमाल से रोशनास कराते हैं? नहीं, अपनी हद तक तो है, क्या घर वालों को भी कराते हैं? अब तो इतनी तेज़ी से सुन्नतें हमारे घरों से नापैद होती जा रही हैं, पहले फिर भी था, गिल्ट के साथ था, फजर के बाद नहीं सोने देते थे लोग, हमारे बड़े नहीं सोने देते थे। हम अपने बचपन में शौक़ रखते थे छुट्टियों में नानी के घर जाने का, लेकिन दिल में गम ये होता था कि नाना सुबह सोने नहीं देते, आते ही सारे घर की खिड़कियां, दरवाजे पर्दे खोल, पंखे बंद, गर्मी की दोपहरें और फजर के बाद घर ऐसे लग रहा होता था जैसे रोशन हो गया। अब तो कोई जरूरत नहीं करता किसी के कमरे में जाए, पहले नहीं सोने देते थे, अब हमारे बच्चे, और देखिए ना अब तो हर एक अपनी रूटीन है, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। मैं सोचे जो नाइट शिफ्ट कर रहा है फिर वो सुन्नत पे तो अमल नहीं करेगा, फिर उसकी जोहर असर किधर चलेगी, वो तो सारी रात जागा, वो तो सोएगा तो आधा दिन फिर ही अगले दिन जाएगा। यानी गैर मखसूस तरीके से हमारी ज़िंदगी से सुन्नतें निकलती जा रही, और इसीलिए बरकत नहीं करी, और इसीलिए फिर बेचैनी और परेशानी है। अगला सवाल, क्या हम अपने गली कूचे और अपने मुआशरे के गुम करदा राह इंसानों को अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल का सबक सिखाते हैं? ये अब आपका मेरा अपना अपना सवालनामा है, इसको खुद चेक करें, खुद लिखें और दुआ करें कि अल्लाह हमें ज़ाया ना करना। रिसालते मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर दूर तक जाते थे और एक एक फ़र्द एक एक कबीले को अल्लाह की बंदगी की दावत देते थे। क्या हमने भी अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए कभी कोई कदम उठाया या बढ़ाया? हम अपने शहर में भी ज़रा सा दूर, हम कहते नहीं ये बहुत दूर है, ये मुश्किल है, इतना मुमकिन नहीं है। एक बंदा आपकी वजह से हिदायत पे आ रहा है, हम ये तड़प नहीं रखेंगे, काम नहीं करेंगे। हमें खुद भी नहीं पता हम कितने कीमती हैं, हमें अपने सोने की वर्थ पता, हमें डायमंड की पता, हमें शीशे की पता, घर के एसी की पता, इसकी पता, हमें इन नेकियों की कीमत नहीं पता भी। बड़े खुशकिस्मत है वो लोग जो आपसे नेकी लेते हैं, जो आपके काम करने वाले, जो आपसे काम लेने वाले हैं, वो आपके मोहसिन हैं। उनके लिए दुआएं करके सोया करें कि अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में बरकत दे, ये हमसे नेकियां लेते हैं, ये भी एम्बेसडर ऑफ इस्लाम होते हैं। लोग आपको नेकी का मौका देकर वो आपके लिए मुहसिन बन जाते हैं, शर्त यह है कि आपकी नज़र ठीक हो। निगाह कमज़ोर होती है, नज़र ख़राब है, तो आपको फिर वो दुश्मन भी लगने लग जाते हैं। तो रिसालते मआब तो दूर दूर तक जाते, हम कहाँ गए? अल्लाह की कसम हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो दीने हनीफ की तबलीग करे, ये कसम इन्होंने खाई है, मैंने पढ़ दी है और बात सच है। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाए, अल्लाह इसकी मदद करेगा और इसकी ज़िंदगी के सारे रास्ते हमवार कर देगा। आज ये नहीं कि इतनी फेमस कोई नहीं है, शोहरत भी होती है तो नमाज रोज़े हज ज़कात की होती है, फिलहाल बड़ा नमाजी है। यानी ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि दोस्ती की जब बातें कर रहे हैं ना, तो जिस तरह हमें अपने अच्छी सोहबत की तलाश रखनी है, अपने बच्चों के लिए भी अच्छी सोहबत करें। 10 लोग अपना मसला सुनाए ना, कि बच्चों के बिगाड़ का या शोहर के या बीवी की को बात करें, तो मैं पहला सवाल यही करती हूँ कि उनको कोई अच्छा दोस्त मिला है, कोई उनका अच्छा जहन बनाने वाला बनाए, तो इंशाल्लाह दुआएं तो करेंगे ना, तो दुआओं से अल्लाह ताला रास्ते भी आसान करता है।